जो प्रतिपल छूटता जाए।
पर्व है
जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम हो, ठहराने के लिए परिश्रम हो और फिर भी न ठहरे, उसको पर बोलते हैं। स्व वो है जो स्वतः सिद्ध है, जिसको पाने के लिए परिश्रम नहीं लेकिन परिश्रम का त्याग। ध्यान से सुनेंगे। स्व उसको बोलते हैं जिसको पाने के लिए परिश्रम नहीं लेकिन परिश्रम का त्याग। स्व वो है जिसको पाने के लिए परिश्रम नहीं लेकिन परिश्रम का त्याग। स्व वो है जिसकी सुरक्षा करने के लिए परिश्रम नहीं, सदा स्वाभाविक सुरक्षित। पर वो है जिसकी सुरक्षा करो तभी भी न टिके और पाने के लिए परिश्रम। स्व वो है कि जिसकी सुरक्षा न करो तभी भी रहे और पाने के लिए परिश्रम का त्याग। और जो स्वाभाविक है, जो जरूरी है, उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो बिन जरूरी है उसको रखने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हमारे मुंह में दांत हैं 32, अब मुंह में पत्थर क्यों पड़े हैं, हटा दो, ऐसा कभी विचार नहीं आएगा। आवश्यक है, स्वाभाविक है। अगर इन 32 दांतों में जरा सा तिनका आता है, चाहे फिर आम का ही हो, आम की जटा हो, केरीना गोटलानी जरा थोड़ी मांस आ भी गई हो, ये पौन त्यों है लुली लटका कर से बारम्बार ये अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं। जो स्वाभाविक है उसको न रखना पड़ता है न हटाना पड़ता है, जो अस्वाभाविक है उसको हटाए बिना चैन नहीं पड़ता। दुख अस्वाभाविक है इसलिए उसको हटाते, अज्ञान अस्वाभाविक है इसलिए उसको हटाते, चिंता अस्वाभाविक है उसके लिए उसको हटाने के लिए मेहनत करते। निश्चिंतता को हटाने की मेहनत नहीं है, सुख को हटाने की मेहनत नहीं, ज्ञान को हटाने की मेहनत नहीं, अज्ञान को हटाने की मेहनत, सत्य को हटाने की मेहनत नहीं। आपसे कोई असत्य व्यवहार करता तो अच्छा नहीं लगता, सत्य व्यवहार करता तो आपको अच्छा लगता। तो सत्य स्वाभाविक है, चेतना स्वाभाविक है, आनंद स्वाभाविक है, तो हमारा स्वभाव है सत्य चित्त और आनंद, ये हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव से जितने अंश में हम दूर चले जाते हैं उतने अंश में हम बेचैन होते, खटकता है। जैसे मुंह में दांत हमारा स्वभाव है, श्वास लेना हमारा स्वभाव है, अन्न में से रक्त बनाना स्वभाव है, इसमें अगर अड़चन होगी ना तो बेचैनी हो जाएगी। भोजन में से खून बनना बंद हो जाए बेचैनी हो जाएगी, श्वास कोई दबा दे बेचैनी हो जाएगी, सत्य स्वरूप परमात्मा से कोई अलग करने की करे बेचैनी हो जाएगी। तो ईश्वर से अलग होना अस्वाभाविक है, चेतना से अलग होना अस्वाभाविक है, और सुख से अलग होना अस्वाभाविक। सुखी रहना स्वभाव है, दुखी रहना अस्वाभाविक, इसीलिए हम दुख मिटाना चाहते सुख मिटाना नहीं चाहते, अज्ञान मिटाना चाहते ज्ञान मिटाना नहीं चाहते, खिन्नता मिटाना चाहते आनंद मिटाना नहीं चाहते, आनंद के लिए तो चेष्टा करते। तो जो वस्तु सहज है स्वाभाविक है उसको पाने के लिए परिश्रम क्यों? दांत बनाने के लिए परिश्रम नहीं, दांत हटाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सुख पाने के लिए परिश्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि सुख हटाने की आवश्यकता नहीं। सुख पाने के लिए परिश्रम नहीं होना चाहिए क्यों? कि सुख हम हटाना नहीं चाहते, सुख हमारा स्वभाव है तो पाने के लिए परिश्रम क्यों? ईश्वर हमारे साथ है तो उसको पाने के लिए परिश्रम क्यों? अमरता हमारा स्वभाव है तो उसको अमरता को पाने के लिए परिश्रम क्यों? हमारा स्वभाव ये जाना नहीं, उसी लिए परिश्रम करना पड़ता है। जय जय। ये हमारा स्वभाव है ये जाना नहीं, उसी लिए परिश्रम करना पड़ता है। दूसरा, जो पर है उसका चिंतन इतना किया कि स्व का स्वभाव खो बैठे, पर में प्रीति इतनी की कि स्व की प्रीति का द्वार बंद हो गया। पर वह है जिसको कितना भी संभाल के रखो तो न संभले, जो स्वाभाविक बदलता जाए, थामने पर न थमे, रखने पर न रहे, परिश्रम करके भी रखो तो न रहे, उसको पर बोलते। और स्व उसको बोलते कि जिसको छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सको, और जिसको पाने के लिए परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, परिश्रम छोड़ना ही उसको पाना है। तो स्व शाश्वत है, पर नश्वर है, स्व स्वाभाविक है और पर परिश्रम साध्य है और अटिकाऊ है। स्व के बिना जीना संभव नहीं और पर को संभाल कर जीना संभव नहीं। जय जय। ये पॉइंट है, सूत्रात्मक है बात है। पर को संभाल कर जीना संभव नहीं और स्व को छोड़कर जीना संभव नहीं। पर को रख कर जीना संभव नहीं और स्व को छोड़कर जीना संभव नहीं। पर उसे कहते हैं जिसका परिवर्तन होता रहे, पर उसे कहते हैं जो रखने पर रहे नहीं, और स्व उसे कहते हैं जिसको छोड़ने पर छूटे नहीं। बचपन अगर तुम होते तो अभी भी होता बचपन, बचपन तुम नहीं है, वो पर है, छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। लोग बोलते संसार छूटता नहीं, हम बोलते संसार रखा जाता नहीं। शू करे बाप जी, संसार नहीं बढ़िया बड़ी जंजाल से आसक्ति से बड़ू छूटतू नहीं। संसार छूटता नहीं ये बात नहीं है, हकीकत में संसार टिकता नहीं, पर टिकता नहीं और स्व छूटता नहीं। बचपन के खिलौने छोड़ने नहीं पड़े, छूट गए। बचपन की तोतड़ी भाषा छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। बचपन के शरीर को छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। जवानी को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती। बुढ़ापा छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये देह छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। ये पर है। जय जय। जब इसको कितना भी संभालो तो नहीं रहता, तो इसके संबंधी कब तक और इसके हक, इसकी सामग्री कब तक। चाहे कितना बढ़िया डॉक्यूमेंट करा के रख लो अपने मकान दुकान का, जमीन जागीर का, लेकिन फिर भी कब तक। छिवटे क्या सुधी, क्योंकि पर व्यवहार में ठीक है करते, लेकिन ये पर को पर समझकर व्यवहार किया जाए तो व्यवहार दुख नहीं देगा। स्व को स्व समझकर जिया जाए तो स्व की दूरी नहीं लगेगी। स्व को स्व समझ कर जिया जाए तो स्व की दूरी नहीं दिखेगी, और पर को पर समझ के व्यवहार किया जाए तो आसक्ति नहीं। ओम ओम ओम। महात्मा बुद्ध मदोगिरी करने के लिए गांव में आए, पिता ने देखा, बड़ा दुख हुआ। बोले अपने खानदान में, अपने कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने भिक्षा पात्र ली, दो रोटी के लिए भीख मांगी हो। आखिर मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे सब तेरे दोष क्षमा कर सकता हूँ, माफी कर सकता हूँ, बाप का हृदय मेरे पास। अभी भी तू आ जा राज्य में, बना बनाया भोजन मिलेगा, बना बनाया खंड मिलेगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं। तेरे को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। जय जय। तने तारा इज्जत नहीं ना पड़ी हो, तारी इज्जत नहीं, तुम्हारी इज्जत खातर तो तू सुधरी जा। वो बिगड़ गए थे मालूम होता। तू मेरा पुत्र है, बुद्ध ने कहा किस हिसाब से। बोले तू मेरे शरीर से पैदा हुआ है, तू मेरा है। बोले अगर आपके शरीर से पैदा होने से मैं तुम्हारा हूं और फिर मैं भिक्षा मांगता हूँ, दुखी होता हूँ तो तुम्हारी इज्जत जाती है, तो तुम्हारे शरीर से तो कई बैक्टीरिया पैदा होते हैं और कई जीव जुए पैदा होते हैं, कई जंतु कीटाणु पैदा होते हैं, मैं तुम्हारे शरीर से पैदा नहीं हुआ हूँ, तुम्हारे शरीर से जो पैदा हुआ वो मैं नहीं हूँ। जय जय। मैं तुम्हारे शरीर से पैदा नहीं हुआ हूँ और तुम्हारे शरीर से जो पैदा हुआ वो मैं नहीं हूँ। फिर भी अगर तुम्हें यह लगता है कि पैदा हुआ ही हूँ, तो तुम्हारे शरीर से जो पैदा हुए उन सबकी जरा देखभाल तो करो। तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ। मैं केवल तुम्हारे घर से ये मेरे पर को पसार किया है। मैं तुम्हारे वहां से प्रकट नहीं हुआ, मैं तो पहले प्रकट था, अभी हूँ और बाद में रहूंगा, मैं वो हूँ। और ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और ये कहीं भी पैदा हुआ था वे भी नहीं रहे, कई जगहों से गुजरते 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 न जाने कई बार आकृति हुई और फिर आकृति लीन हो गई। ये संघ के दोष से आए हम। खेत में मिर्च का बीज डालो, दूसरे तरफ अंगूर के बीज डालो, अंगूर भी हुआ है मिर्च भी हुए, ये दोनों भिन्न भिन्न दिखते हैं, भिन्न भिन्न बीजों के संस्कार हैं। जला दो तो पांच भूत मात्र रह जाएंगे और वो पांच भूत पांच भूतों में अपने शुद्ध स्वरूप में चले जाएंगे। ये बीज के कारण संस्कार अलग अलग के कारण अलग अलग दिखते हैं। ऐसे ही मान्यता के बीज पड़े हैं, इसलिए हम अलग अलग दिखते हैं। मान्यताओं को ज्ञान की अग्नि में जला दो तो परब्रह्म परमात्मा अवशेष रह जाएगा, उसको स्व बोलते हैं। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। योग तो लोग करते हैं लेकिन मदाश्रय नहीं करते। ईश्वर के लिए योग किया जाए तो भ्रांति दूर हो जाएगी, भ्रम दूर हो जाएगी। भक्ति हम करते हैं स्व के लिए करते हैं कि पर के लिए करते हैं? स्व वो है जिसे छोड़ना चाहो तो छूट नहीं, और पर वो है जिसे रखना चाहो तो नहीं रख सकते। तो पर का चिंतन, पर की प्रीति और पर की निष्ठा छूटते ही स्व की निष्ठा, स्व की प्रीति और स्व का चिंतन होने लगेगा। स्थूल शरीर से क्रिया होती और वो दो प्रकार की होती, एक तो शुभ होती है दूसरी अशुभ होती है। शुभ भी थकाती है अशुभ भी थकाती है। फिर प्राणी स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर में आ जाता है चिंतन में। स्थूल शरीर से क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, और कारण शरीर में सविकल्प निर्विकल्प अवस्था आती है, निद्रा या समाधि की अवस्था आती है। ये प्राणी स्थूल में से थकता है तो सूक्ष्म में जाता है, सूक्ष्म से थकता है तो कारण में जाता है, लेकिन कारण से थकता है तो फिर स्थूल में आता है। इन तीन अवस्थाओं में प्राणी घूम रहा है बेचारा। अब इन तीन अवस्थाओं के अच्छे और बुरे, अशुद्ध क्रिया और शुद्ध क्रिया, अशुद्ध चिंतन और शुद्ध चिंतन, अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था, ये भेद हैं। अशुद्ध की अपेक्षा शुद्ध ठीक है, अशुद्ध चिंतन से शुद्ध चिंतन ठीक है, लेकिन ये भी एक अवस्था है, ये भी स्थिति है। और पर का चिंतन, स्व की प्रीति और पर की प्रीति, स्व में सुख और पर में सुख। हकीकत में स्व का चिंतन तभी तक करना पड़ता है जब तक पर के चिंतन का प्रभाव है। पर के चिंतन के प्रभाव से बचते ही स्व का स्वरूप प्रकट होने लगता है, पर की प्रीति के प्रभाव से बचते ही स्व की प्रीति प्रकट होने लगती है, पर में स्थिति के प्रभाव से बचते ही स्व में स्वतः स्थिति है। ये बात जरा सूक्ष्म है, ऊंची बात है। तो तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, अवस्थाएं होती है।
एक तो स्थूल शरीर से शुभ अशुभ क्रिया होती है, अशुभ क्रिया से बचने के लिए शुभ क्रिया करनी चाहिए, लेकिन अशुभ क्रिया कर करके भी प्राणी थकता है। शुभ क्रिया से फिर शुभ चिंतन में जाता है, तो अशुभ चिंतन और शुभ चिंतन, तो क्रिया स्थूल शरीर का धर्म है, चिंतन सूक्ष्म शरीर का धर्म है, और निद्रा या समाधि कारण शरीर का धर्म है। तो सदा समाधि में भी नहीं रहेगा, सदा निद्रा में भी नहीं रहेगा, सोच के बदू छोड़ दी मैं, तो चिंतन भी नहीं करतो, दुनिया ने आया भी नहीं करतो, सेवा भी नहीं करतो, बस हूँ तो आराम करूच, सोई रहो छो, खूब आराम हो, खूब मजा आवे, आड़ा पड़े, पर सतत नहीं पड़ी सको, सतत आप सो नहीं सकते, सतत समाधि में नहीं रह सकते, सतत चिंतन नहीं कर सकते, सतत क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि सब पर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब प्रकृति का है, माया का है, लेकिन इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अशुद्ध क्रिया से बचने के लिए शुद्ध क्रिया, अशुद्ध चिंतन से बचने के लिए शुद्ध चिंतन, और शुद्ध चिंतन का मतलब है, शुभ क्रिया का मतलब है क्रिया से पार जाना, शुभ चिंतन का मतलब है चिंतन रहित अवस्था में जाना, और शुद्ध अवस्था का मतलब है अवस्था से पार जो अपना आत्मा है उसमें पहुंचना। ये बात आपको पहली पहली बार सुन रहे, जरा कठिन